ఆత్మసంభావనాధమః భూతేషు నిరనుక్రోశ నిర్వాణం తద్వదోవదః ఉమానయోషిత ఉత్క్లీబ ఆత్మసంభావనోదమః భూతేషు నిరనుక్రోశో నిర్వాణం తద్వదోవదః ఉమానయోషిత ఉత్క్లీబ ఆత్మసంభావనోదమః భూతేషు నిరనుక్రోశో నిర్వాణం తద్వదోవదః
पोषण ही रुचि रखने वाला अधमः नीच भूतेषु अन्य तत् उसका वधः वध करना मारना अवधः न मारने के समान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति चाहे वह पुरुष स्त्री या नपुंसक हो जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तात्पर्य पृथ्वी अपने स्वाभाविक रूप में स्त्री के तुल्य है अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है किंतु पृथु महाराज तर्क देते हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक चाहे वह पुरुष हो स्त्री या नपुंसक यदि अपने साथी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है और इस वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश करने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं चाहता तो भगवान या प्रभु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चागदातं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांता राधाकांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति चाहे वह पुरुष स्त्री या नपुंसक हो जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता राजा द्वारा वध्य है, ऐसे वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। हरे कृष्णा। मैं आप सभी भक्तगणों का भी यहाँ उपस्थित हैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आए भागवत चर्चा में और मुझे अवसर दिया कि मैं आपके समझ कुछ कह पाऊँ अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हमारा जो संदर्भ चल रहा है वो आप सभी को पता है, आप निरंतर इसका अध्ययन सुनते आ रहे हैं इसको, वो है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। किस तरीके से महाराज पृथु पृथ्वी पर कुपित हैं, हालांकि वो गौ वेश में है, गाय रूप में है, फिर भी महाराज पृथु पृथ्वी पर कुपित हैं। तो पीछे कुछ श्लोकों में आपने देखा होगा कि महाराज कितना क्रोधित हैं, पृथ्वी के पीछे दौड़ रहे हैं, एकदम गुस्से में आग बबूला हैं, लाल हुए पड़े हैं और पृथ्वी को दौड़ा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते पृथ्वी हाँफ रही है और बाद में जाके उन्हीं के शरण ग्रहण करती है। तो ये हम देख रहे हैं, फिर भी पृथ्वी महाराज जब पृथ्वी को संबोधित करते हैं तो पिछले के श्लोक हमने देखा था तो कहते हैं इंग्लिश में देखा था, तुमने कहा था माई डियर अर्थ, मेरी प्रिय पृथ्वी। तो वहां से मुझे ये समझ में आया कि किस तरीके से राजा पृथु हालांकि इतने कुपित हैं, बहुत गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी शिष्टाचार नहीं छोड़ रहे। उसको कहते हैं माई डियर, मेरी प्रिय पृथ्वी। तो यही संस्कृति है, यही संस्कार है, साक्षात भगवान हैं, कुपित हैं, पृथ्वी ने अपराध किया है। किस तरीके से आप सबको पता है, बीजों को उसने अपने घर में छुपा लिया था और नहीं दिया था, सारी प्रजा बहुत ही हाहाकार मच गया था, भुखमरी मच गई थी, तो राजा बहुत ही कुपित थे, लेकिन फिर भी जब उसको संबोधित कर रहे हैं तो प्रिय बोलते हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं कितना शिष्टाचार संस्कार यहां पर है और ये संस्कृति यहां पाई जाती है। हम देखते हैं कि कितने तरह के लोगों ने हमारी इस धरती पर आक्रमण किए, यूनानियों ने, मुस्लिमों ने, तुर्कियों ने, फिर भी ये संस्कृति पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। अभी भी हमें ये देख सकते हैं कि संस्कृति संस्कार अभी भी हैं। जब मैं पीछे पढ़ रहा था तो मुझे याद आया एक किस्सा जो हमारे स्कूल के दिनों में हमारे टीचर बताया करते थे। वो लखनऊ से थे तो बताते थे किस तरह से लखनऊ के लोगों में आचार में शिष्टाचार पाया जाता है। हालांकि अभी आजकल यूपी वगैरह में तो ये सब नहीं देखने को मिलता, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह लखनऊ के लोगों में, वो बता रहे थे कि वहां के लोग अगर गुस्सा भी होते हैं, अगर किसी को धमकी भी देते हैं तो बोलते हैं इस तरह से, बोलते हैं कि कहां गया, यस, कि देखिएगा जनाब, हमसे ज्यादा अधिक ना बोलें, हम एक मुक्के से आपकी बत्तीसी तोड़ देंगे। कितना सभ्य तरीके से बोलते हैं, हालांकि उसको मारने की बात कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, या फिर क्या पता मार ही दें, लेकिन काफी सत्कार से बोलते हैं। और बदले में जो रिप्लाई आता है, जो उत्तर आता है, वो भी काफी सत्कार पूर्वक होता है कि देखिए जनाब, हमें हाथ लगाने की कोशिश ना कीजिएगा वरना आपका हाथ को शरीर से अलग कर देंगे। मतलब कि डांट रहे हैं, उसको फटकार रहे हैं, हो सकता है आगे जाके मारपीट भी हो जाए, लेकिन शिष्टाचार बरकरार रहता है। तो ये हम देख सकते हैं कि संस्कृति कितनी प्रगाढ़ है, कितनी स्ट्रांग है। राजा पृथु भाई यहां पे बता रहे थे, और मैं देख रहा था कि इवन गुरुकुल में भी अभी हम लोग बच्चों को जब डांस वगैरह सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, तो बच्चे ये नहीं सीखते जैसे कि डिस्को डांस या फिर जैज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके डांस होते हैं, वो नहीं, उड़ीसी डांस। उड़ीसी नृत्य क्या है, भगवान जगन्नाथ की ग्लोरिफिकेशन में जो नृत्य करते हैं वो डांस। उसका जो म्यूजिक होता है, जो उसका संगीत होता है, वो क्या है, जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित दशावतार सूत्र। तो ये संस्कृति बरकरार है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और इसके साथ अगर हम आज के श्लोक को देखें तो ये श्लोक मुझे बहुत बढ़िया लगा, बल्कि मुझे ये लगा कि इस पूरे अध्याय में, ये अध्याय खत्म होने वाला है, कुछ ही श्लोक बचे हैं, तो इस पूरे अध्याय में मुझे लगा सबसे बढ़िया श्लोक यही है। ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इसमें हमारे मन की बात लिखी है, हमारे मन की बात, मतलब आप सभी तो शुद्ध भक्त हैं, अपने बारे में बता रहा हूं कि हमारे मन की, जो हमारे मन में चलता है, जिस तरीके से मुझे याद है एक व्यक्ति को कुछ कविता पढ़ रहे थे, कुछ पुरानी कविता मैंने लिखी थी, तो उनको पसंद आ गई, तो मुझे लगा मेरी कविता इतनी अच्छी तो नहीं है, क्या पसंद आ गया, मैंने पूछा भाई साहब क्या पसंद आया आपको इसमें, तो उन्होंने कहा कि जो इसमें लिखा है वो मेरे मन में चल रहा है इसलिए मुझे पसंद आ गया। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे मन में चल रहा होता है वो चीज हमें ज्यादा पसंद आती है। तो वही मुझे यहां श्लोक में मिला कि जो हमारे मन में चलता है वह श्लोक में लिखा है। तो मुझे लगा सबसे बढ़िया श्लोक यही है। क्या लिखा है श्लोक में, ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, आगे लिखते हैं, राधा द्वारा वध्य है, ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता, यानी कि हम लोग मार सकते हैं। हमारी जो नैसर्गिक प्रकृति यही तो है, किसी को डांट दिया, किसी को डपट दिया, क्या कुछ कुछ गलती किया, उसको जाकर बता दिया ये गलती गलत कर रहे हो आप, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो बिल्कुल सही लिखा हमारे लिए कि कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसको डांट सकते हो, उसका अपराध नहीं लगेगा, ऐसा प्रतीत होता है ऐसा। इसलिए मुझे लगा सबसे बढ़िया श्लोक यही है, मेरा मन इसमें लिखा हुआ है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा और डीप देखेंगे तो मिलेगा, इसमें क्लियर है कि गलती, कोई भी क्रूर व्यक्ति, अब क्रूर की परिभाषा क्या है, हमारे लिए कोई व्यक्ति क्रूर हो सकता है, किसी और के लिए क्रूर हो सकता है, क्या पता आपके लिए मैं क्रूर हूं, क्या पता मेरे लिए आप क्रूर हैं, तो क्रूर व्यक्ति क्या है, तो उसके लिए क्या, कैसे पता लगेगा, गुरु, साधु, शास्त्र। जो गुरु बताते हैं, जो साधु दिखाते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, तो हमारा भागवतम शास्त्र क्या लिखा है इसमें, ऐसी कौन सी गलती है जिनके लिए इन तीनों को दंड दे सकते हैं, पुरुष को चाहे स्त्री को चाहे ये थर्ड कैटेगरी के जो पर्सन है नपुंसक उनको भी। तो ये क्या गलतियां हैं, तो आगे लिखते हैं, जो दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता और जो अपने निजी भरण पोषण में लगा रहता है, यानी कि अंग्रेजी में कहें सेल्फिश, केवल अपने बारे में सोचता है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की गलतियां दिखाना। तो अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको हम दंड दे सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, उनकी गलतियां हम टोक सकते हैं, और अगर ज्यादा बड़ी गलती हो तो उनको दंड में मारना पीटना जो भी है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इवन मंदिरों में भी जब कोई चोर चोरी करता है तो उसको बख्शा नहीं जाता, उसको पीटा जाता है, ये देखा गया है अक्सर, मैंने देखा है, ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि वो चोरी अपने लिए कर रहा है, वो बिना चोरी के भी अपना पेट पाल सकता है, लेकिन उसको चोरी करना जरा आसान लगा तो उसने वैसे करके अपना पेट पाला चाहा, तो उसको भी या तो पुलिस के हवाले कर देते हैं या डांटते हैं या तो मारते हैं। तो इसका अपराध नहीं है, इसका अपराध नहीं है, इस तरह से समझ सकते हैं, इसका अपराध नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कहां मिलते हैं, तो मैं सोचा तो मुझे पता लगा हर जगह मिलते हैं, इवन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें, ऐसा पाया गया है कि अगर आप एक थाली में, बंद कमरे में एक थाली में 10-20 केले रख दें, केले बनाना, और एक जानवर का जानवर को छोड़ दें, कोई भी जानवर, बंदर छोड़ दो नहीं तो कुत्ते छोड़ दो कुछ भी, तो वो उतना ही लेगा जितना उसके पेट में आएगा, ज्यादा नहीं लेगा, जितना पेट में आ गया उतना लेके बाकी छोड़ देगा, जानवरों में ऐसा पाया गया है। सुबह सुबह हमारे गुरुकुल में जब नाश्ता होता है तो काफी सारा पैसा तो बच जाता है, जब बंदर के खाते हैं जब उनका पेट भरता है तो खुद चले जाते हैं, वो संगले के नहीं जाते। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप किसी भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी आम आदमी से करें तो हम देखेंगे वो ना सिर्फ पेट भरेगा अपनी पॉकेट भी भरेगा। तो ये जो चीज देखने को मिलती है ये खास तरह मनुष्य में देखने को मिलती है, कोई जानवर प्राणी ऐसा नहीं करते, कभी नहीं देखा गया कि अपना खाया भी और उसके बाद जेब भर लिया कि कल काम आएगा, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिले। लेकिन मनुष्य के पास अपना पेट भी भरना है, अपनी पॉकेट भी भरनी है, अपनी पॉकेट में भर के संग ले जाओ कल काम आएगा, एक साल बाद काम आएगा। तो ये संरक्षण का कि हमें जोड़ के रखना है अपने कल के लिए परसों के लिए, ये धारणा, तो ये धारणा मनुष्य में पाई जाती है अक्सर। और हम लोग ये सोचते हैं इसमें कि पहले किसी भी तरीके से पहले मेरा पेट भर जाए दूसरे का नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था कि मनुष्य वो होता है जो दूसरे के बारे में पहले सोचे, अपने बारे में सोचे उसे मनुष्य नहीं कह सकते, जो दूसरे के बारे में पहले सोचे वो मनुष्य है। आपसदारी भाईचारा वही ना बता रहे हैं कि जो दूसरे जीवों पर दया ना दिखाए, जो अपने भरण पोषण में लगा हुआ है केवल, उसको दंड दे सकते हैं, उसको हम दंड दे सकते हैं, यह लिखा हुआ है। तो अगर हम इस पे अवलोकन करें, खुद को यहां पे अगर देखने की कोशिश करें, तो क्या जिस मनुष्य की बात हो रही है क्या वो हमसे अलग है? सोच के देखिए, हम में से कितने लोग जब प्रसाद पाने जाते हैं सबसे पहले जाके नहीं बैठते, सबसे पहले बैठूंगा सबसे पहले मुझे मिलेगा। तो ये भावना कि पहले मुझे मिले बाकी को मिले चाहे ना मिले, ये भावना वही उसी की बात हो रही है, ये भावना कि पहले मुझे मिल जाए, पहले मेरा भरण पोषण हो, या फिर प्रसारम सर्व करना हो। ये मैं सभी पे कटाक्ष नहीं हो रहा है, ये जस्ट थोड़ा सा पता नहीं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये मनुष्य में ये भ्रांति पाई जाती है। अगर हम सेवा भी कर रहे हैं, प्रसारम सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका मन करते हैं कि पहले प्रसारम सेवा इसलिए करते हैं ताकि अपनी प्लेट अच्छे से बना सके, ऐसा देखा गया है, मतलब मैंने देखा है और साक्षात मैं खुद भी कभी कभी ऐसा करता हूं, तो अपनी प्लेट पहले, इसीलिए बड़ा सर्विंग करते हैं। तो ये वही उसी प्रकृति की बात हो रही है, वही नेचर जो लगभग सभी में तो नहीं लेकिन कुछों में ऐसा पाया जाता है। तो वही सेल्फिश नेचर, वही पहले अपना भरण पोषण, फर्स्ट मी, पहले मैं, इस धारणा की बात हो रही है। जिसमें यह धारणा होती है वो दंडनीय है, उसी के बारे में यहां पर प्रथमवार बता रहे हैं कि जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है, जिसे मतलब नहीं है कि बाकी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर प्रसादम बढ़ रहा है या कुछ भी लगा लीजिए, धन का संचय, धन हम देखते हैं आज दुनिया में कि किसी के पास धन है तो इतना धन है संभल नहीं रहा, और किसी के पास खाने को भी नहीं है, ये देखने को मिलता है आज के संसार में, तो वो इसी का है। तो ऐसे व्यक्तियों को दंड देना उचित है, ऐसे व्यक्तियों को दंड दे सकते हैं, बस हमें देखना यह है कहीं वो व्यक्ति हम ही तो नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे व्यक्ति ना बने, हम ऐसे ना हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और दूसरे के बारे में ना सोचते हो। आगे बताते हैं, जो दूसरों पर दया नहीं दिखाता, दया दिखाना माने, एक महाराज थे उनका नाम पता नहीं, शायद शिव पता नहीं, याद नहीं है, वो महाराज बहुत लंबा व्रत रखे थे और जब व्रत का पालन उन्होंने किया तो खाने का प्लेट आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनसे ज्यादा कोई और भी भूखा है तो उन्होंने आधा प्लेट उसको दे दिया कि तू खा ले पहले, जब बचा हुआ आधा जब वो खाने लगे तो फिर कोई और आ गया, आखिर में एक गिलास पानी का बचा, सोचा कि चलो पानी पी के अपना व्रत खोल दें, फिर कोई चंडाल पता नहीं कुछ कुत्ता वो आ गया तो उसको भी दे दिया। तुम देखते हैं कितना उच्च उनका स्वभाव है, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, ये यहां से हमें सीखने को मिल सकता है कि किस तरीके से हमें अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए लिखा भी आ गए, पनिशमेंट, सजा मिलेगी, अपराध है ये, उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। तो अच्छा, अगर ये मानते हैं कि हम ऐसा नहीं है, हम सब जो भी यहां पर हैं हम ऐसे नहीं है, हम एकदम शुद्ध भक्त हैं और हम ऐसी गलती नहीं करते, हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं, तो क्या हमें अधिकार है कि जो ऐसा करता है उसको सजा दें? ये भी प्रश्न उठता है, मतलब कि हम नहीं करते लेकिन इसका मतलब यह हमें अधिकार मिल गया कि हम जो करता है उसको सजा दें? उसके लिए भी हम लिखते हैं, राजा द्वारा बद्ध है, राजा द्वारा जो ऐसी कृति करते हैं कौन सजा देगा उनको? राजा, या फिर आज के संदर्भ में अगर बात करें जो अधिकारी है, जो इंचार्ज है, जो मैनेजर है, जिसको यह सेवा दी गई है उसको अधिकार है कि कुछ कहे, डांटे या जरूरत पड़े तो उसको उसके अकॉर्डिंग सजा भी दे, हम सबको नहीं। लेकिन ये राजा या राजा की बात की गई है, आजकल राजा मिलते हैं क्या? मुझे पता नहीं भारत में ऐसे कितने राज्य ऐसे जहां राजा अभी भी मिलते हैं, शायद एक दो हैं लेकिन सब में नहीं। हर जगह डेमोक्रेसी आ गई है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जनता वोट करती है, उसको देखकर जो चुना जाता है, और फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है, आधे आधी जनता प्लस एक, यानी कि अगर मान लीजिए 1,00,000 जनता है जो मत डालने वाली है तो 50,000 प्लस एक अगर किसी को मिल गया तो वह विजयी हो गया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं दूसरी दृष्टि से, लगभग लगभग आधी जनता, आधी प्रजा उसके हित में नहीं है। ये तो मतलब हुआ डेमोक्रेसी का, मतलब क्या हुआ? अगर हमने ये निर्धारित किया है कि आधा प्लस एक अगर आपको मत मिल गए तो आप विजयी हैं, आप शासन कर सकते हैं, आप नेता बन गए। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखें तो लगभग लगभग आधा, आधा माइनस एक उसके पक्ष में नहीं है, तो क्या करा जा? जब आधी प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं है, नहीं चाहती आपको, फिर भी आप राजा हैं, तो क्या ऐसा राजा निर्णय ले सकता है? आजकल ये देखा जाता है, यही डेमोक्रेसी है कि जिसको सब लोग नहीं चाहते वही राजा है और वही निर्णय लेता है, तो कुछ भी करे सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो उसके पक्ष में नहीं है वो तो हमेशा ही उसके पक्ष में नहीं है। तो इसीलिए आज के युग में इसको पालन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके संदर्भ में मुझे याद आया, कुछ दिनों पहले दिल्ली में चुनाव हुए थे, आपको पता होगा, और वहां पर शायद 95% सीटों से कोई जीता है, तो उसको हम फिर भी कह सकते हैं 95% ज्यादा, 50% नहीं, आधा नहीं, बहुत ज्यादा, 95% लोगों ने उसको चुना, उसको हम बोलते थे कि हाँ वो राजा हो सकता है, 95% से ज्यादा लोगों ने उसको चुना। वहां पर हम ये फंडा फ्री भी लगा सकते हैं कि चलो वो राजा है और वो जो करेगा वो सबके हित में होगा, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहां पर केवल आधा प्लस एक देख के काम होता है, वहां तो मुश्किल है, वहां तो हम सबको कुछ नहीं कर सकते, ये धारणा है। तो ऐसे राजा देखे गए हैं, युधिष्ठिर महाराज, श्री राम, राजा खुद पृथु, तो ये ऐसे राजा थे जिनको सारी प्रजा चाहती थी कि वो राज्य करें, और जो भी वो निर्णय लेंगे हमारे पक्ष में वह मान्य होगा। श्री राम हम जानते हैं, जब दशरथ जी ने नियुक्त किया कि श्री राम जी राजा बनेंगे, तो सारी प्रजा बहुत खुश थी और सब चाहते थे कि वही राजा बने, और जब उनको किसी कारणवश वनवास भेजा गया तो प्रजा ने कहा हमें नहीं रहना, हमें संग जाना इनके, तो सारी लगभग सारी प्रजा राम जी के साथ चल पड़ी वनवास के लिए। तो ये राजा है, सारी प्रजा चाहती है कि वो राजा बने, वो राजा है, और उसको अधिकार है फिर कि ऐसे धूर्तों को या फिर ऐसे जो प्राणी पाए जाते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनको परवाह नहीं है कि दूसरे वाला उसको क्या है, उसका कैसे पेट भरेगा, जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता उसको दंड देने का, ऐसे राजा को अधिकार है। और आज के संदर्भ में किसको अधिकार है, जो नियुक्त किया गया है, जैसे हमारे टेम्पल में टेम्पल प्रेजिडेंट होता है, प्रशासन में प्रशासन में इंचार्ज होता है, तो हर जगह मैनेजर होते हैं, तो उनको अधिकार है। और अगर हम लोग जिन्हें अधिकार नहीं है अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए कहावत मैंने सुनी है, शायद आपने सुनी होगी, जिसका काज उसी को साजे, दूजा करे तो धन्यवाद, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो ये कहावत है, थोड़ी अजीब लग सकती है कि ऐसा इतना खतरनाक डंडा बाजे, लेकिन ये सही है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, आप लोगों को पता ही होगा, 3:35 श्लोक में कहा है, श्रियां सुधर्मो विगुण परधर्मा सुनिष्ठिता सधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अनुवाद, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। यानी कि अगर आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो आपको नियुक्त किया गया है अगर वो करते हैं, भले ही थोड़ा दोष के साथ करते हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कहते हैं ना टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है, तो गलतियां होंगी, लेकिन अपनी नियत के जो सेवा है उनमें करेंगे वो चलेगा। क्या लिखा है, वो श्रेयस्कर है, किससे, अगर आप किसी और की अन्य के कर्मों को भली भांति, किसी और के कर्मों को ड्यूटीज को उससे अच्छे से भी करेंगे, वो कुछ कर रहा है आप उससे अच्छे से कर रहे हैं लेकिन आपकी सेवा नहीं है, तो वो श्रेयस्कर नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं 3:35 आगे बोलते हैं, सभी कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। संस्कृत है स्वधर्म निधनम श्रेय, अगर अपने कर्मों को करते करते, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते करते हम मर भी जाएं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ना कि दूसरों के कर्मों में इंटरफेयर करें, दखलंदाजी करें, हाँ उसको भी बुरा लगता है और बहुत सारी बातें, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भवावह हो सा है, संस्कृत है परधर्मो भयावह, अगर हम किसी और के कर्मों की करने की कोशिश करते हैं उसका परिणाम बहुत भयावह होता है, बहुत भयानक, भयावह का हिंदी में अर्थ यहां पर है खतरनाक, डरावना, खतरनाक हो सकता है, हमें लगेगा नहीं खतरनाक तो नहीं है, उसने सेवा से ढंग से नहीं किया मैंने कर दिया, अब अच्छे से हो गया, ये तो अच्छा परिणाम हुआ है ना, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैंने मैनेज कर दिया। हाँ, जो प्रसारण इंचार्ज है वो उनसे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, सबको प्रसारण नहीं मिल रहा, मैंने कर दिया, ये तो अच्छी बात है। इसका भयानक निर्णय क्या, भयानक परिणाम क्या है, तो हो सकता है वो तुरंत नजर ना आए, लेकिन जब भगवान ने गीता में लिखा है तो इसको हमें मानना होगा और आगे जाके इसका परिणाम जरूर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अगर अपना एग्जाम्पल देखूं लाइव, जैसे कि हम लोग गुरुकुल में सेवा करते हैं तो सबकी सेवा नियुक्त है, जैसे कि मुझे मुझे रसायन शास्त्र पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, और कोई भौतिक शास्त्र पढ़ा रहा है, और मैं चाहूं नहीं वो गलत पढ़ा रहा है, मैं इसमें इंटरफेयर करूं, हो सकता है मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दूं, बच्चे मुझसे ज्यादा खुश हो जाए, लेकिन उससे होगा क्या, जो पर्सनली फेस करते हैं हम लोग उससे क्या होगा, जो मेरी खुद की सेवा है उसमें अड़चन आ जाएगी। क्यों? छोटा दिमाग, छोटी सी बुद्धि हमारी, कितना लोड देंगे उस पर, अल्टीमेटली क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो सेवा है उसी को ढंग से कर दें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई चीजें देखने को मिलती है कि ठीक ही काम नहीं हो रहा, कभी प्रसाद में ढंग से सेवा नहीं हो रही, तो मन करता है कि अरे मैं मौजूद हूं तो मुझे थोड़ा सा अपना हस्तक्षेप करके ठीक कर देना चाहिए, वो सही है, ठीक है ना, वो इतना थोड़ा मोटा करना सही है, लेकिन पूरा उसको कर देना, श्रेय कर देना, उसको पूरा कंडेम कर देना कि नहीं इसको करना आता ही नहीं है, देखो मैं था तो कितना अच्छा कर दिया मैंने, मुझे बना दो उसका इंचार्ज, तो ये इससे होगा क्या, आपकी सेवा बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जो आपकी मेन सेवा थी उसमें अड़चन आ जाएगी। जो मान लो मेरी सेवा है कि केमिस्ट्री पढ़ाना, रसायन शास्त्र पढ़ाना, ठीक है, उसमें अड़चन आएगी, ये आती है, इसको भले हम लोग आजकल की दृष्टि में ना नजर आए, लेकिन एक लंबे समय में हमें नजर आएगा कि दिक्कत आती है और बहुत खतरनाक निर्णय होता है। आपकी सेवा, मान लीजिए आपकी सेवा है कि छोटा सा एग्जाम्पल, मंदिर का घंटा बजाना, हर घंटे में बजता है मंदिर का घंटा, किसी की एक सेवा है, किसी सिक्योरिटी गार्ड की सेवा है, वो घंटा बजाएगा, अभी उसका मन क्या, नहीं सामने वाला सिक्योरिटी अच्छी सेवा नहीं कर रहा, जरा मैं उसको सिखा के बता के आता हूं, इतने में क्या होगा, ऐसा हो सकता है किसी दिन वो अपना घंटा बजाना भूल जाए, या बजाने से 10 बजाने 11, तो ऐसा कब होगा, जब उसका फोकस अपनी सेवा से हटके कहीं और चला गया। तो बहुत ही साधारण है, हम सब इसको अपने जीवन में देखते हैं, अगर अपना काम हम उसी फोकस से करते हैं कर सकते हैं, गलतियां भी होंगी सुधार लेंगे, लेकिन दिमाग भटका दिया, किसी और सेवा में घुस गए तो अपनी सेवा बिगड़ जाएगी, अपनी सेवा बिगड़ जाएगी, तो इसलिए दूसरे की सेवा में नहीं घुसना चाहिए, अपनी ही सेवा ढंग से करनी चाहिए, भगवान कहते हैं गीता में। इसके आगे हम अगर देखें कि बताया जाता है दया, दया नहीं दिखाना, तो उसके लिए दया से एक बात मुझे याद है, आजकल तो थोड़ा मुश्किल है देखना, लेकिन जब हम छोटे थे तो आज भी काफी माता लोग करते होंगे, जो रोटियां बनती हैं सबसे पहली रोटी गाय की रखते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते की रखते हैं, तो ये दया है, दया का प्रतीक है, हमें अपने अलावा औरों की भी चिंता है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, तो ये होता है, हमने अक्सर देखा है, लेकिन आजकल के संदर्भ में ऐसा हो पाना, कोई करता है ऐसा, पकाते ही नहीं है, फास्ट फूड का जमाना है, किचन बंद, मार्केट जाओ, पैसा है फास्ट फूड खरीदो खाओ, ऐसे व्यक्ति से अगर हम बोले कि आज हमारा फास्ट है तो बोलेगा अरे मेरा तो रोज फास्ट होता है, मैं रोज फास्ट फूड खाता हूं, तो उसको पता नहीं फास्ट का मतलब क्या है, उसके लिए फास्ट फूड ही फास्ट है, वो रोज फास्ट करता है क्योंकि वो रोज फास्ट फूड खाता है, लेकिन ये आजकल होता जा रहा है, तो ये सही नहीं है, ये यहां पे कंपैशन नजर नहीं आता। हम गाय के लिए कुछ रखें, कुछ कुत्ते के लिए रखें, सभी प्राणियों के लिए रखें, हालांकि ये तो बताया जाता है कि गृहस्थ लोगों का तो ये होता चाहिए कि खुद खाने से पहले बाहर जाके एक बार चिल्ला के पूछे क्या आसपास कोई है जो भूखा हो, और जब कोई ना आए तब खाना शुरू करें, तब तक दे, दूसरों को दे, दूसरों को खिलाए, तो ये दया। इसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वास्तविक दया है, जो हमने डिस्कस किया अभी, किसी को खाना दे देना या फिर किसी की सेवा कर देना, वो दया है, भौतिक स्तर पे है, लेकिन अगर हम इसको आध्यात्मिक स्तर पे देखें तो हमारे लिए कौन सी दया है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं प्रचार, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस, तो प्रचार करना, ये बताते हैं प्रपद यहां पर कि किस किस तरीके से ये। जहां तक आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। तो अगर हम भक्तों की बात करें और हमें उच्च कोटि का भक्त बनना है तो हमारा ये फर्ज बनता है, ये हमारे लिए जरूरत है कि हम प्रचार करें। अगर हम प्रचार नहीं करते तो हम उच्च कोटि के भक्त नहीं बन सकते। इसका भी रेफरेंस है, इसका गीता में हम बोलते हैं अध्याय 18 में क्या बोलते हैं, मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है और उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है और ना कभी होगा। कौन? अगले श्लोक में बोलते हैं जो मेरे नाम का प्रचार करता है, बहुत प्रिय है। गीता में बहुत बोला कि ये करो, मनमना करो, ये करो, वो करो, सब मुझे बहुत गुह्य ज्ञान दिया, अध्ययनों में गुह्य ज्ञान दिया, मनमनाओ मत भक्ता, ठीक है ना। लेकिन 18वें में बताया दो श्लोकों के अंदर क्या बताया, जो प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली सारी चीजें कर रहा है, अपना मन भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मुझ पर कर दिया क्योंकि वो मेरा प्रचार कर रहा है। अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं है तो प्रचार क्या करेंगे? अगर डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है उसे कुछ भरोसा नहीं दवाई पे, क्या दवाई देगा। इसी तरीके से जब हम प्रचार तभी करेंगे ना जब हम कन्विंस होंगे, जब हम कन्विंस होंगे, जब हम इसको मानेंगे तभी तो प्रचार करेंगे। तो इसीलिए अगर हम प्रचार करते हैं तो ये अंडरस्टूड है, ऐसा माना जाता है कि हमें पता है, हम कन्विंस हैं, तो मनमनावा मनभक्त वाली कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं तभी प्रचार करते हैं हम लोग। तो इसलिए प्रचार करना उच्च कोटि में माना जाता है। आगे क्या बताते हैं, और उन दीन दुखियों पर दया रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। तो जिनको ज्ञान नहीं है, इनोसेंट पीपल, फिर प्रभात बोला करते थे कि जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट हैं, उनको प्रचार करो ना, किट एमिश करना, जो जो नहीं, एक है ना ऑफेंस, दस ऑफेंस में से एक है, अश्रद्धालुओं को भगवतों का प्रचार करना ऑफेंस है। तो जो नहीं मानता है, जो नहीं पता, जो समझने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दो उसको, उस पर कृपा होगी, उसे केवल प्रसाद दो और छोड़ दो, प्रसाद काम करेगा अपना। ऐसा हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि प्रचार करते हैं तो समझता नहीं कोई व्यक्ति, प्रसाद दे दो केवल और प्रसाद काम करेगा अंदर, प्रसाद अंदर अंदर काम करेगा। एक दिन वो खुद आकर क्वेश्चन पूछेगा, खुद आकर पूछेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, भक्त कैसे बनना है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कोट करते हैं प्रहलाद महाराज को कि वो कैसे उच्च कोटि के भक्त हैं, और उनके लिए तो नरसिंह देव जी कहते हैं कि बहुत ही बड़े भक्त प्रहलाद महाराज हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी जब नरसिंह देव जी को उनका जो गुस्सा ठंडा करने के लिए जो बता रहे थे, तो दो श्लोक यहां पर हैं, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 43वां और 44वां। मैं सिर्फ समय का अभाव के कारण केवल अनुवाद पढ़ रहा हूं, जरा देखिएगा। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिंह देव से, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूं, ये प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं, उनको अपने से कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या दुख दिए, ये हुआ वो, उनको हम लोगों के लिए जो अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, भक्ति के लिए नहीं, भक्ति भी कर रहे हैं तो मालूम है दिमाग रहा है, कह रहे यार गाड़ी मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, ना धनम वो हो रहा है, हाँ धनम हाँ सुंदरी हो रहा है, ना धनम सुंदरी नहीं हो रहा, वो होना चाहिए, हो क्या रहा है, हाँ धनम हाँ सुंदरी कविता सब हो रहा है, तो वो ना हो करके, तो उसके लिए प्रभाव चिंतित कर रहा हूं। आगे बोलते हैं, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं, वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह ना करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। तो देखिए प्रहलाद महाराज उनको कंडेम कर रहे हैं, किनको, जो बहुत बड़े साधु बने होंगे हाँ, लेकिन अपने बारे में, उनको भी क्या बोला गया है, सेल्फिश, केवल अपने बारे में सोचते हैं वो भी कि खुद की कैसे उन्नति हो, और जो बाकी जीव जंतु उनको कौन देखेगा, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कंडेम करते हुए उनके बारे में लिखते हैं, वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। देखिए प्रहलाद महाराज का क्या हृदय है, हमारे लिए कितना सोचते हैं, मुझ जैसे मूर्खों को, उनके लिए लिखते हैं प्रहलाद महाराज कि इनको भी मैं चाहता हूं कि मेरे संग चले। आगे बता रहे हैं, देखिए क्या लिखते हैं, मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, अतएव मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो नहीं चाहते, भगवान कह रहे चल मेरे साथ चल, नहीं मुझे लिबरेशन नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके सामने जाना, मुझे उनको ताकना है, जो बद्ध जीव फंसे हुए उन्हें कौन संभालेगा, उन्हें कौन बचाएगा, ये भक्त का हृदय है, ये दया है, ये दया है, जो कंपैशन की बात की गई है दया, वो असली दया ये है, आध्यात्मिक स्तर पर दया ये है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं, वो गीत मैं यहाँ पे गाना था लेकिन टाइम नहीं है तो मैं ये बता दूंगा, मैं आपने सुना होगा ये गीत, नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती ऐसे नाम हट जिविर कारण, इसकी दूसरी पंक्ति है, प्रभुर आज्ञा भाई मांगी एई भिक्षा, बोलो कृष्णा भज कृष्णा करो यही शिक्षा। तो आप देखिए क्या बोलते हैं भक्तिवनोद ठाकुर, करो यही शिक्षा, यही शिक्षा करनी है हमें कि भजो कृष्णा, कृष्ण का नाम जपो, यही शिक्षा करनी है, क्यों क्यों करें हम तो नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, आगे कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया आ गया, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। ये मैसेज हमें हमारी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जीवे दया यही है कि कृष्ण का नाम प्रचार करें हम लोग, हम जैसे बद्ध लोगों को, जो ऐसे बद्ध लोग हैं उनको प्रचार करना चाहिए। एक बार एक लेक्चर हुआ था, पंजगढ़ गुरु जी लेक्चर दे रहे थे, तो उनसे मैंने प्रश्न किया लेक्चर के अंत में कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब हम प्रचार करने के लिए श्रेष्ठ हैं, मतलब कब हमें तो लगता है हम इतने पतित हैं, पहले हमारा उद्धार हो। कहते ना जन्म सार्थक करी कर प्रोपकार, पहले जन्म सार्थक करेंगे फिर प्रोपकार करेंगे, ऐसा ऐसी स्थिति मन में आती है कि पहले अपना थोड़ा सार्थक कर लें, तो नहीं उन्होंने बताया कि नहीं, मन में ऐसा ख्याल आ रहा है मतलब आप क्वालिफाइड हो, चलो प्रीचिंग करो। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने हमने आज समझाया है कि वहां पर सुना प्रभुपाद ने वेट किया कि छह छह महीने के साल नहीं 10 साल बाद, 10 साल भक्त हो गया अब प्रचार करो, नहीं तुरंत तुरंत दीक्षा दिया, 2-3 दिन में दीक्षा देके चलो प्रचार में लगो, क्योंकि पता है वहां से प्रिपरेशन होगा, जो लोग पुस्तक वितरण करते हैं वो लोग जानते हैं किस तरीके से पूरा एकदम ईगो पूरा खत्म हो जाता है जब पुस्तक वितरण करते हैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तो हमें पता होंगे तभी तो, हमने किताब पढ़ लिया आप प्रचार कर रहे हैं तो कोई पूछेगा उसको जवाब देंगे, तर्क में नहीं लगना है, लेकिन इतना करना है कि वो गर्मी से हो जाए, अगर नहीं हो रहा किताब दो, नहीं लेता तो प्रसाद दो, हरे कृष्ण, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, लेकिन प्रचार करना है हमेशा, हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हम प्रचार में आगे बढ़े निरंतर। तो प्रहलाद महाराज की इस प्रेयर को हम ध्यान रखते हुए, भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस आग्रह को मानते हुए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग प्रचार कार्य में लगे रहेंगे, और यही है, यही कृष्ण भावनामृत संघ है, ये हरि कथा मूवमेंट, ये मूवमेंट है, रुका हुआ नहीं है, मूवमेंट चलते रहना है। चलेगा कैसे, प्रचार करने से। अगर हम सभी लोग लगेंगे भजनानंदी, अपना भजन करते रहेंगे, प्रचार कौन करेगा, तो प्रचार करना मेन है, अपना भजन करो लेकिन प्रचार भी करो। हमें देखना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे प्रचार किया हमने, मुझे वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब समझ में आ रहा है, उसने घंटा बता दिया है, बताने के लिए समय समाप्त हो चुका है। तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और मुझे बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, किसी का कोई टिप्पणी टीका या प्रश्न हो तो हो सकते हैं। सब गुरु और हम करवाते हैं, हम तो बस जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली गुरु गौरांगी है जो पीछे से बताते हैं। तो आपने सही बोला कि किस तरीके से हम लोगों को प्रचार में ही जुड़ना है, वही हमारा मिशन है। प्रभा जी वही सिखा के गए हैं हमको, अपने अपनी भक्ति करो लेकिन प्रचार मत भूलो, प्रचार जरूर करना है। अगर प्रचार नहीं करेंगे ना तो ये लगा लीजिए हम खाए जा रहे हैं, क्या होगा, फट जाएगा पेट। इसलिए उसको हजम भी तो करना है, तो कैसे, प्रचार करके। सिर्फ खाने से काम नहीं होगा, फट जाएगा पेट। तो अपनी भक्ति करें और प्रचार भी करें। धन्यवाद गुरु जी, टिप्पणी करिए। हरे कृष्ण।